नमस्कार साथियों, छिंदवाड़ा मोबाइल वाली में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज एक कदम अंधश्रद्धा निर्मूलन की ओर कार्यक्रम के तहत हमारे साथ छिंदवाड़ा मोबाइल वाली के मंच पर जुड़ रहे विवेकवादी संगठनों से जुड़े डॉक्टर प्रकाश जी ढोकने, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय महासचिव अनि हरीश जी देशमुख और तक्षशिला संस्थान के सचिव एवं वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर से संसद से जुड़े हैं टीकेश गुवे जी। नमस्कार जी।
नमस्कार।
जैसा कि आज संपूर्ण देश में ज्योतिष शास्त्र को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि मोबाइल वाणी विगत कुछ सप्ताह से मोबाइल वाणी पर एक कदम अंधश्रद्धा निर्मूलन की ओर कार्यक्रम हरीश जी देशमुख और टीकेश गुवे जी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, तो आज हमारे साथ ज्योतिष शास्त्र और कुंडली पर विशेष चर्चा के लिए आमंत्रित है विवेकवादी संगठनों से जुड़े डॉक्टर प्रकाश जी ढोकने, जो कि सत्यशोधक महासंघ मुंबई के से जुड़े हैं और सर्टिफिकेट के पद पर भी कार्यरत है। तो देशमुख जी।
जी जी नमस्कार।
आज आप इस चर्चा को विधिवत शुरू कर सकते हैं। सादर आमंत्रण।
नमस्कार। देखिए, आज प्रकाश ढोकने जो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो शाखा है ठाणे, उसके वो अध्यक्ष है और सत्यशोधक महासंघ के वो महासचिव है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़ने के नाते उन्होंने विशेष तौर पर कुंडली, ज्योतिष शास्त्र, इसका भी काफी स्टडी किया है और जहाँ वहाँ उन्होंने परिषद और सम्मेलन में उन्होंने भाषण भी दिया है। जैसा कि हमारे मित्र पात्रकर जी ने बताया कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ द्वारा ज्योतिष शास्त्र पाठ्यक्रम में शुरू करने का जो भारत सरकार ने शुरू किया है, उसके खिलाफ में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति लड़ाई है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार वैज्ञानिक चेतना का प्रसार प्रचार करना हम सभी का कर्तव्य है। ऐसे समय में इग्नू द्वारा 20 वर्ष में ज्योतिष शास्त्र विषय के ज्योतिर्विज्ञान के नाम पर ज्योतिष का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय जो लिया है। हालांकि खगोल शास्त्र ज्योतिषी खगोल शास्त्र और ज्योतिष को मान्यता नहीं है, खगोल शास्त्री ज्योतिष को मान्यता नहीं देते। ज्योतिष पाठ्यक्रम शुरू करना मतलब लोगों को अंधश्रद्धा के खाई में ढकेलना। स्वामी विवेकानंद एवं स्वातंत्र्यवीर सावरकर, इन्होंने भी ज्योतिष इस विषय का विरोध किया है और हमारी संत परंपरा में भी संतों ने भी विरोध किया है। इसलिए यह अभ्यासक्रम हमारे भारतवर्ष के विद्यापीठों में लागू न हो, इसका प्रयास समिति कर रहे हैं और सभी बुद्धिवादी लोग कर रहे हैं। और हमारे साथ में विशेष तौर पर हमारे छिंदवाड़ा इकाई के अंधश्रद्धा निर्मूलन के संयोजक पीकेश गुरु, जिन्होंने हमारे साथ में काम किया है, वो भी हमारे साथ रूबरू होने वाले है। पात्रकर जी।
नमस्कार ढोकने साहब, डॉक्टर साहब।
नमस्कार।
डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी देशमुख साहब ने जो अपनी बात रखी और आज संपूर्ण देश में ज्योतिष को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है, और चूंकि आप सत्य समाज संगठन मुंबई के सचिवनिष्ठ भी है और पूर्वगामी विचारधारा के समाज सुधारक और संतों के द्वारा जो विचार इस देश में लाए गए, जिसमें हमारे समाज सुधारक एक वरिष्ठ समाज सुधारक हो गए, जिन्होंने एक सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक नामक एक पुस्तक भी लिखी है और उन्होंने इन सारी बातों का जिक्र उस पुस्तक में किया है, ऐसे ज्योतिराव फुले जी, और जिन्हीं के माध्यम से सत्य समाज संगठन की शाखा बनी हुई है और आप उसके सरचिटनिश भी है, तो आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं कि भाई कुंडली और ज्योतिष शास्त्र, इसमें क्या अंतर है, क्या वो वर्तमान समय में समाज के लिए लाभप्रद है या नहीं। तो हम आपसे जानना चाह रहे कि जब भी शादी करने में कुंडली का देखा जाता है, कुंडली को देखा जाता है, तो यह समाज के लिए कितनी उपयोगी है, या इसका फायदा कुंडली का मानव को होता है या नहीं।
पात्रकर जी, हमारे समाज में कुंडली देखकर शादी होती है यह सच है, पहले केवल ब्राह्मण जाति में होता था, कुछ वैश्य जाति में होता था। धीरे धीरे यह प्रचलन बढ़ते गया, जैसे लोग पढ़े लिखे होते गए, हर जाति में यह कुंडली देखने का तरीका शुरू हुआ और इसके बहुत बुरे परिणाम शादी करने वाले लड़के लड़की को भुगतने पड़ते हैं और खास कर लड़कियों को। पहले तो देखेंगे इसमें कोई तथ्य है क्या। मैं जाहिर तरीके से कहता हूँ, शादी के लिए कुंडली देखकर कोई भी फायदा नहीं है। इसके आधार पर शादी टिकेगी 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है। उल्टा शादी टिकने के लिए आवश्यक जो पति पत्नी में गुण होने चाहिए उसके तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं और जो बिल्कुल महत्व की चीज नहीं है उस पर हमारा एकमात्र ध्यान होता है। शादी टिकने के लिए आवश्यक गुण, यह विषय पर आगे कभी बोलेंगे। आज कुंडली और इस विषय पर बात करेंगे अपन। पत्रकार जी।
हाँ जी बोलिए। जैसा कि आपने अभी इस कुंडली को लेकर जाहिर तरीके से आपने इसका निषेध किया है, हम आपसे ये भी जानना चाहते कुंडली में कितने ग्रह होते और इन ग्रहों में सत्यता कितनी है।
कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। आप सब जानते हैं कि सूर्य ग्रह नहीं है, तारा है। सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा भी ग्रह नहीं है, वो उपग्रह है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि यह ग्रह है। राहु केतु यह भी ग्रह नहीं है, मतलब 9 में से 4 ग्रह नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ आ रही, बोलिए बोलिए।
हाँ, मतलब 9 में से 4 तो ग्रह नहीं है, 5 ही है। अगर कोई बिल्डिंग के अगर समझो 9 पिलर है और उसमें से अगर 4 पिलर निकाल दिए जाएंगे तो क्या बिल्डिंग रहेगी? नहीं रहेगी। वैसे ही एक कुंडली में से अगर 4 ग्रह निकाल दिए जाएंगे तो क्या कुंडली का कोई अर्थ रहेगा, तथ्य रहेगा उसमें? बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर चंद्रमा ग्रह बोलते हैं तो गुरु को 63 उपग्रह है। कुछ उपग्रह तो चंद्रमा से भी साइज से बड़े है, उनको कुंडली में क्यों नहीं लिया गया? पृथ्वी ग्रह होने के बाद में भी कुंडली भी नहीं है।
जैसा कि आपने बोला है कि पृथ्वी ग्रह होने के बावजूद भी कुंडली में नहीं है, तो इस संबंध में थोड़ा विस्तार से बताइए।
मतलब आप सभी लोग जानते हैं ना कि ग्रह को कौन से ग्रह होते हैं, कौन से ग्रह नहीं होते हैं। तो पृथ्वी जो है ग्रह है लेकिन कुंडली में उसको नहीं लिया है। मतलब जो ज्योतिष लोग है उन्होंने उसको क्यों नहीं लिया है, यही तो मेरा सवाल है। तो कुछ लिए है, कुछ जो ग्रह नहीं उसको भी लिए है। मतलब कुंडली में जो 9 ग्रह होते हैं उसको कोई अर्थ नहीं है, यही मुझे कहना का था।
डॉक्टर साहब, ये जो कुंडली है जिसको लेकर शादी जैसे पवित्र रिश्ते के लिए कुंडली देखकर बनाई जाए, तो ये कुंडली आखिर बनाई कैसी जाती है?
कुंडली जन्म के समय के अनुसार बनाई जाती है, मतलब जन्म के समय और तिथि और स्थल के अनुसार बनाई जाती है। लेकिन जन्म के समय के बारे में ज्योतिष में एक वाक्यता नहीं है, कुछ अलग अलग बोलते हैं। कुछ ज्योतिष बोलते हैं कि डिलीवरी के समय जब बच्चे का सर बाहर आता है तब, दूसरा बोलता है कि डिलीवरी के समय पूरा बच्चा बाहर आता है तब, तो तीसरा बोलता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब जब नाल काटते हैं तब का समय लेना चाहिए, तो चौथा बोलता है कि जब बच्चा रोता है तब, मतलब वो पहली सांस लेता है तब का समय लेना चाहिए, तो एक बोलता है कि जब गर्भधारणा होती है तब, मतलब जब डिलीवरी होते हैं वहां से 9 महीना, 9 दिन, 9 घंटे और 9 महीने अच्छा पीछे जाने का और वहां का टाइम लेने का। कुछ बोलते हैं कि जब बच्चा जन्मक्षम होता है तब, तो मतलब ये जो होता है इसमें एक वाक्यता नहीं है। और वही लोग बोलते हैं कि कुंडली में अगर 1 मिनट का भी फर्क होता है तो कुंडली सही नहीं निकलती है, और यहाँ पे तो 5-5 मिनट का डिफरेंस है, तो कुंडली कैसे सही होगी? अगर जन्म के अनुसार अपना भविष्य निश्चित होता है तो उसका उपयोग मैं खुद लिया होता। मेरी पत्नी गर्भवती मतलब प्रेग्नेंट रहते ही सबसे पहले मैं अच्छे ज्योतिषी से पास जाता और उसे डिलीवरी महीने के 3 अच्छे कुंडली वाले अच्छे दिन निकालता है कि जिसकी अच्छी कुंडली, मतलब एक प्रतिभा देवी पाटिल लेता, दूसरा लता मंगेशकर लेता और तीसरा किरण बेदी लेता है मतलब। और वो कुंडली लेके मैं अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता और उसको बोलता है कि इसमें से मुझे एक अपॉइंटमेंट दे दो, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट बोलेगा कि प्रतिभा देवी पाटिल का तो मेरा सब बुक है 10 लाख में। बोले ठीक है, दूसरा अपना ले भाई लता मंगेशकर ले ले। बोले नहीं वो भी बुक है, तो मैं बोलेगा चलो किरण बेदी ले लो। तो मतलब ऐसा अगर ऐसे होता तो उसके सबसे ज्यादा फायदा मैं लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
डॉक्टर साहब,
डॉक्टर हाँ पात्रगरी मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर प्रसाद डॉक्टर ने सही बताया कि ये इसका फल ज्योतिष कुंडली इसका अपने जीवन में कुछ भी मायने नहीं रखता, तो वही नहीं बता रहे। तो 186 वैज्ञानिक जो है उन्होंने भी एक परिपत्रक निकाल के ये जाहिर किया कि खगोल शास्त्र अलग है और फल ज्योतिष अलग है, क्योंकि ये फल ज्योतिष में ग्रह तारों का जिसके कारण जब कुंडली तैयार करते हैं उसका मानवीय जीवन पर कोई भी असर नहीं होता। इसमें 19 बहुत बड़े वैज्ञानिक नोबेल पारिश विजेता है, हमारे इंडिया के भी एक श्री चंद्रशेखर करके भी एक वैज्ञानिक उनकी सिग्नेचर है। ऐसे 186 वैज्ञानिकों ने जो बुद्धिवादी उन्होंने सिग्नेचर करके ये जग में जाहिर किया कि ये फल ज्योतिष बकवास है, इसको कोई भी आधार नहीं है, वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए इसको कोई स्थान नहीं देना चाहिए। पत्रकार जी,
डॉक्टर साहब
बोलिए।
जैसा कि अभी देशमुख साहब ने भी बताया कि वैज्ञानिक लोगों ने भी इसका विरोध किया है, और आपने कुंडली का बहुत अध्ययन किया है, और क्योंकि आप सत्य शोधक समाज संगठन के है, महासंघ से है जुड़े हुए और सरचिटनीस भी है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो कुंडली है इसमें जो 12 स्थान होते हैं वो क्या कहते हैं।
जब कुंडली में 12 स्थान होते हैं वो उसमें से पहला जो स्थान है वो बताता है कि सुख दुख आपके जीवन में, दूसरा बताता है धन प्राप्ति, तीसरा बताता है पराक्रम साहस, चौथा बताता है गृह सुख, पांचवा संतान, छठवा जय पराजय, सातवा पति पत्नी विवाह संबंध बताता है, आठवा मृत्यु अपघात बताता है, नवा बताता है परदेश गमन, दसवा शिक्षा, ग्यारहवा रिश्तेदार से होने वाले लाभ, और 12 आत्महत्या। उसमें से मैं सिर्फ 2 पे बात करूंगा। नंबर 8 जो है उसमें बताता है मृत्यु और अपघात। अगर किसी के कुंडली में मृत्यु अपघात लिखा होता है तो उसका जो उपयोग है हवाई जहाज की कंपनी सबसे ज्यादा लेती, क्योंकि बोर्डिंग पास देने से पहले वहां पे एक ज्योतिष बिठा था, तो ज्योतिष को सबसे सबका कुंडली चेक करता है कि हरेक की किसमें कोई कुंडली में अपना मृत्यु योग तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और दूसरा जो पॉइंट है 10वां, उसमें लिखा है शिक्षा। मेरा सबसे सवाल है कि 1848 के पहले भारत में किसी भी नारी के जन्म कुंडली में शिक्षा का योग नहीं था क्या? मतलब सावित्रीबाई फुले ने जब 1848 में महिला की स्कूल शुरुआत की, उसके पहले किसी भी महिला के कुंडली में शिक्षा का योग नहीं था क्या?
डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने कुंडली के 12 स्थानों के बारे में बताया, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मनुष्य की जाति भी 12 बताई गई है, राशि मनुष्य के लिए राशि 12 बताई गई है, तो इस राशियों के बारे में आपकी क्या राय है?
हाँ, मैं उसमें शॉर्ट में बताऊंगा कि 12 राशि होती है, और भारत की लोक संख्या मतलब 138 करोड़ है। अगर उसे 12 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 करोड़ एक राशि में होते हैं। मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की नहीं बात कर रहा हूँ। और 12 राशि के 12 लोग अगर दोपहर के 12 बजे धूप में एक साथ खड़े करेंगे तो क्या एक को ज्यादा धूप लगेगी, दूसरे को कम धूप लगेगी, और तीसरे को ठंडी लगेगी? ऐसा नहीं होता है, सबको धूप एक जैसी लगती है। मतलब ये 12 राशि में भी कोई मतलब नहीं है।
डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कुंडली के बारे में वो सत्य बताया जिसकी आज समाज को आवश्यकता है, लेकिन हमारे जो पुरोगामी संत हुए, पुरोगामी जो समाज सुधारक हुए, यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद जी और सावरकर जी ने भी ज्योतिष शास्त्र पर बहुत कुछ कहा है, तो आप मोबाइल वाले के श्रोताओं को बताना चाहोगे कि स्वामी विवेकानंद जी और सावरकर जी की ज्योतिष शास्त्र के बारे में क्या राय थी?
सावरकर को आपको मैं बता रहा हूँ कि आज 4 जुलाई है और स्वामी विवेकानंद जी की आज पुण्यतिथि है, तो मतलब आज का जो दिन है वही दिन है 4 जुलाई। तो स्वामी विवेकानंद कहते थे यदि आप ग्रह के आधार पर अपने जीवन के निर्णय लेते हैं तो आप मानव जीवन जीने के लायक नहीं है, यह मानसिक गुलामी है। और अपने सावरकर जी ने बताया है कि पुणे के जो पेशवा लोग है जब उनके ऊपर संकट आता था तो वो अपने गणेश जी को मतलब गणपति को पानी में डुबा के रखते थे, लेकिन जो इंग्रज लोग है वो जब आए तो इनका जो गणपति जो पानी में डुबा के रखने का जो प्रथा था वो वही हिसाब से उनकी पेशवाई भी डूब गई है, ऐसे सावरकर ने बताया है।
डॉक्टर
पात्रकर जी, और मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ तमाम ज्योतिषी जो है इस प्रकार से प्रसार प्रचार करते हैं कि ज्योतिष आधार मानना है, ग्रह तारों का आदमी के जीवन परिणाम होता है, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इसलिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने तमाम ज्योतिषियों को एक चुनौती दी है कि हम 10 जन्म कुंडलियां देंगे, वो पुरुष है कि स्त्री है, मृत है या जिंदा है, जीवन तो छोड़ दो, इतना भी बता देंगे तो हम उनको 25 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन संघ की 25 ज्योतिषियों को ऐसी 25 लाख रुपए की चुनौती है कि हम जन्म कुंडली जो देंगे वो स्त्री है कि पुरुष है, मृत है कि जिंदा, इतना भी बता देंगे तो ये हमारी चुनौती स्वीकारने के कोई भी ज्योतिषी सामने आए, ऐसा भी मैं आह्वान इस मोबाइल वाणी से करता हूँ। धन्यवाद
सर। जैसा कि अभी देशमुख साहब ने एक चुनौती दी है, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे साथ तहसील संस्थान के सचिव एवं वरिष्ठ पत्रकार टिकेश गुरुवेजी भी जुड़े हैं, जो कईयों वर्षों से अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नागपुर के साथ भी कार्यरत है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनके द्वारा संसद में विगत वर्षों में एक भांडाफोड़ किया था ज्योतिष्य का, और ज्योतिष्य जिस तरह कोर्ट तक गया था, तो वो मोबाइल वाणी के श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि उस ज्योतिष्य के साथ होटल के बारे में क्या क्या चर्चा हुई थी और किस तरह का इसका भांडाफोड़ हुआ था।
दिनकर जी, हेलो।
हाँ
बोलो बोलो
दिनकर जी, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ जी हाँ।
दिनकर, आपने जो संसद में ज्योतिष जो है राजा राम ज्योतिष की बात आप पूछ रहे हैं, एक्चुअली ये ज्योतिष शहर में आया था, शहर के एक लॉज में रुका था, और इसका दावा था कि ये चेहरा और फोटो देखकर आदमियों का भविष्य बताता है, ये इसका दावा था। हेलो, आवाज आ रही है?
आ रही है,
बोलिए, बोलते रहे।
इसका दावा था कि वो चेहरा और भविष्य देखकर और उसकी और किसी व्यक्ति की फोटो देखकर ये उसका भविष्य बता सकता है। ये काफी 3-4 दिनों से ये लॉज में रुका हुआ था, इसने कुछ कॉम्प्लेंट जो है वो शहर में बटवाए थे, वो कॉम्प्लेंट हम लोगों के हाथों में लगे, और इसका ये जो दावा था कि भाई मैं सामने जो आदमी है उसका मैं चेहरा देख लूंगा या मैं किसी व्यक्ति की फोटो देख लूंगा तो मैं उसका भविष्य बता दूंगा। हमने चलो इस ज्योतिष की वास्तविकता क्या है ये देखी जाए, जांच पड़ताल की जाए, तो मैंने मेरे कुछ पुलिस मित्र थे जो SDOP थे चौधरी करके, मैंने उनसे बातचीत की, हमारे कुछ साथियों से बातचीत की कि चलिए आज अपनी ज्योतिष की पोल खोलेंगे। तो दिनकर जी, हमने क्या किया था कि हमने 2 लोगों को लेकर गए थे कि आप इनका एक तो चेहरा देखकर इनका भविष्य बताएं। उन 2 लोगों में एक ऐसा था कि जिसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन हम तो ये कह के लगे थे कि इसकी शादी नहीं हो रही है। दूसरा आदमी बिल्कुल मेडिकल रूप से बिल्कुल फिटनेस था, लेकिन उसको रोग है, बीमारी है, वो दवाइयाँ वगैरह लेता है, डॉक्टर का उपचार करता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका भविष्य आप बताएंगे। और फिर इसके अलावा हमने दूसरा और एक प्रयोग किया था कि हमारे संसद के ही एक पार्षद थे जो कम से कम 6 माह पहले उनका निधन हो चुका था, और हम उनकी फोटो लेकर हम ज्योतिष के पास में गए थे, और हमने उसमें ये पूछा था कि ये व्यक्ति पिछले 4 माह से घर से लापता है, इसे काफी ढूंढा गया है लेकिन ये मिल नहीं रहा है, तो कृपया आप ये बताएंगे कि ये और ये कहाँ मिलेगा। तो इसलिए हमने मुख्यतः जो हमारा जो मुख्य फोकस था वो था हमारे वो मृतक पार्षद पे कि ज्योतिष जो है इसकी हमको जो है सत्यता बताए। तो ज्योतिष ने बताया कि हाँ ये फलाने दिशा में अभी है, और ये और उसने अपनी जिस तरीके से भी भाषा है उस भाषा से हमको भरमाने का बहुत कोशिश किया, और कोशिश करने के बाद में ये बताया कि ये आदमी लौट के आ सकता है, इसके कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है और वो आपको पूजा करना पड़ेगा, उसकी आपको शांति करनी पड़ेगी, और वो शांति कैसे करेंगे उसने इतना क्रिटिकल बताया कि हमारे सामने सवाल खड़ा हो गया था कि हम इसकी शांति कैसे कर पाएंगे। हमने उस ज्योतिष से सवाल पूछा था राजा राम जी से कि भाई क्या आप ये शांति आप ही करोगे या कोई और पंडित जी करेगा, तो उसका यह कहना था कि कोई पंडित इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ये नहीं बताया, इसलिए इसकी जो ग्रहों की जो शांति है, जो पूजा है, जो विधि करना है वो मुझे ही करना पड़ेगा, और उसके लिए उसने हमको 10,000 रुपये की राशि बताई थी, और 10,000 रुपये राशि में से आखिर में मोल भाव करते 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 मामला 3,000 रुपये पे आके रुका था, और ये तय हुआ था कि हम इस दिन 3,000 रुपये देकर किस दिन अपन पूजा करेंगे। उसमें हमारा तय हुआ था कि जिस दिन आप दूसरे दिन ही तय हुआ था कि आप दूसरे दिन शाम को आइए, पैसे लेके आइए और पूजा की सामग्री वगैरह सब मैं कर लूंगा, बस आप पैसे भर लेकर आइए और अपन सब यहाँ पूजा विधि करेंगे, उसके जो ग्रह की शांति है वो कर लेंगे। हमने यही बात हमारे पुलिस मित्र को बताई, अधिकारी को बताई और हमने एक व्यू रचना रचाई कि भाई इसको ट्रैप कैसे करना है। तो व्यू रचना के अनुसार वर्तमान में आप भी जानते कि अशोक कामोन जी हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे इस अभियान में पूरी तरह शामिल थे। हमने अशोक कामोन जी को सामने किया और उनसे कहा कि भाई आप बताएं कि ये पार्षद जी की पूजा विधि करना है तो आप ये सब जो है व्यवस्था जो है वो अशोक कामोन जी करेंगे। ये सब तय हुआ, तय अनुसार हम दूसरे दिन शाम को बिल्कुल वहाँ उस लॉज पे पहुंचे। पुलिस स्टेशन के पीछे ही ये लॉज था और पूरी तैयारी के साथ में, पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ में थी। और जैसे ही पूजा विधि वगैरह की बात हुई थी उसी हिसाब से कामोन जी गए, साथ में उस हमारे पार्षद की फोटो लेके गए और उस पार्षद का नगर अपने पास में रख लिया था। तो जैसे ही पंडित जी ने कामोन जी को अपने रूम में प्रवेश दिया, बाकी सब सारे लोगों को कहा कि आपको बाहर बैठना पड़ेगा और अकेले कामोन जी भीतर थे और सारी उसने पूजा विधि वगैरह करना, यानी पूरा पूजा की व्यवस्था करना शुरू किया था। और शुरू करने के बाद में लास्ट में उसने कहा कि अब आप जो है मेरी सारी विधियां तैयार हो गई है, अब मैं पूजा शुरू करूंगा, आप वो 3,000 रुपया जो अपना सौदा हुआ है वो 3,000 रुपया आप पूजा की जगह पर रख देंगे। कामोनी के लिए जैसे ही वो 3,000 रुपया वो पूजा स्थल पर रखे, वैसे ही पुलिस ने दरवाजा खोला, अपने अनिश के कार्यकर्ताओं ने भी, कार्यकर्ता भी उनके साथ थे और वो भीतर गए। और भीतर जाने के बाद में फिर ज्योतिषियों से काफी सवाल जवाब हुए। ज्योतिषियों से कहा गया कि जिस व्यक्ति का आप चेहरा देखकर भविष्य इतने कल से आप बताते आ रहे हैं, कृपया वो आदमी मृत हो चुका है, उसके लिए 6 महीने हो गए हैं और ये 6 महीने पहले का उसका जो है नगर पालिका का, नगर परिषद संसद का मुख्य प्रमाण पत्र है। तो ज्योतिष से सवाल था कि जब आप भविष्य देखते हैं तो यदि आप चेहरा और फोटो देखकर भविष्य बताते हैं तो फिर आपने इस व्यक्ति का फोटो देखकर ही बता देना चाहिए था कि ये 6 माह पहले मृत हो चुका है। चलिए आप समय नहीं बता सकते थे तो आप ये बता सकते थे कि आदमी मृत हो चुका है। वहीं पर ज्योतिष की पोल खुली और
ज्योतिषी खुद का भविष्य भी नहीं समझ सका कि मुझे रेड करके मुझे पकड़ने वाले हैं, दूसरों का भविष्य कैसे बताएगा वो पूर्वी जी।
हेलो गुरुवी जी, आपने बहुत अच्छे से पोल खुली और अभी हम थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे।